गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंद जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे कुबज कांचड़ी चडरी चत पे तू ओया मनुष से नाग रे कोविद कांचड़ी चडरी चत पे तू ओया मनुष से नागरे सूझ नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे बिना प्रेम बैरागरे और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे अर सुमर सो हंस कवावे ये कमी क्रोधी कागरे अर सुमर सो हंस कवावे ये कमी क्रोधी कागरे भोरा न भर में व्यस के बन में चल बेगमपुर बागरे चल बेगमपुर बागरे और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे जाग जाग नर जाग रे शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी पाया अटल सुहाग रे नितानंद महबूब गुमनी परगट्य पूर्ण बागरे परगट्य पूर्ण बागरे और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लागरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जागरे जाग जाग। अब क्या बताते हैं और बात तेरे काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे क्या सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। अब परमात्मा ने हमें क्या याद दिलाया है, मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान मन नेकी कर ले दो दिन का मेहमान जोरू लड़का कुटुंब कबीला दो दिन का तन मन का मेला जोरू लड़का कुटुंब कबीला दो दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, यत जी माया मंडन मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं ये नाते रिश्ते ये बिल्कुल अस्थाई हैं। मृत्यु होने के उपरांत ना ये आपके ना आप इनके। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहां करेगा विश्राम मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। रहट माल जो पनगट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। रहट माल पर गट जो भरीता, आवत जावत भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवाले रे कल्याण मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। लख 84 की सह तरासा, ऊंच नीच कर लेता वासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान मन ने की कर ले, दो दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, परमात्मा हमारे लिए कितने तड़फ रहे हैं, किस किस प्रकार से हमें चेतावनी दे रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं, जब कोई व्यक्ति घर से चलता है यात्रा के लिए, तो सबसे पहले ये सोचकर चलता है कि कल मेरा रात्रि में विश्राम कहाँ करूँगा। कोई प्लेटफार्म पर रुकूंगा, या कोई कमरा ले लूंगा कोई किराए पर, धर्मशाला में या होटल में। कहां जाऊंगा, या कोई रिश्तेदारी रिलेशन का टारगेट बनाकर चलता है। परमात्मा कहते हैं, जब तू संसार छोड़कर जाता है, इसकी तने आपको कभी चिंता ही नहीं बिल्कुल भी, कि यहां से जाने के बाद तेरा ठिकाना कहां होगा। कम से कम चलने से पहले वो ठिकाना तो बना ले अपना। तो क्या बताते हैं, कहां से आया तू कहां जाएगा, और ये शरीर छूट जाएगा तब तू कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान मन ने की कर ले। दो दिन का मेहमान। मन ने की कर ले दो दिन का मेहमान। अपने आत्माओं हमारे कितने अच्छे भाई हैं, बहन हैं, कोई नाती रिश्तेदार हैं या कोई मित्र हैं, तो हमें संसारिक क्रियाओं का ही ज्ञान दे सकते हैं, इस माया के जोड़न की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, कि गुरु के बिना तुझे कौन बताओगा तू कौन है, कहां से आया था और इस झंझट से तेरा छुटकारा कैसे होगा। फिर क्या बताते हैं कि लख 84 की सह त्रासा और ऊंच नीच घर ले ताबासा, आज कोई ब्राह्मण कुल में जन्म है, अगले जन्म में वो मनमाने किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले ले, आज कोई हिंदू है अगले जन्म में मुसलमान के घर जन्म हो जा, आज हम ब्राह्मण बनकर न सोचे हमारे से ऊंचा कोई नहीं, अगले जन्म में वही प्राणी मनमाने पशु योनि में घूम रहा हो। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि कह कबीर सब मिटाऊं रासा, यानी तेरा सब झंझट समाप्त कर दूंगा, तू कर मेरी पहचान, केवल मुझे पहचान ले कि हु इज गॉड। अब परमात्मा ने क्या बताया है, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, कोडी कोडी माया जोड़ी और बात करे छल की, कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की, पाप पुन की या बंधी पटरिया कैसे हो हल्की, पाप पुन की या बांधली पटरिया कैसे हो हल्की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, मात पिता तेरा परिवार भाई बंधु ये तरिया मतलब की, मात पिता परिवार भाई बंधु तरिया मतलब की, चलती बरिया कोई न साथी या मट्टी जंगल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा झला झलकी। अब जैसे आज कोई अच्छी पोस्ट प्राप्त है, कोई मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, तो सभी अन्य प्राणियों में आज तेरी शोभा न्यारी है और सत भक्ति नहीं करेगा तो फिर कैसी दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके तेरी महिमा झला झलकी, बने कुकरा बिस्टा खावे अब बात करे बल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की, नाम सुमर ले, ये संसार रहन का सपना ओस बूंद जल की, ये संसार रहन का सपना ओस बूंद जल की, सतनाम बिन सब साधना जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले अंत समय जब चले अकेला आंसू ने निढल की। अंत समय जब चले अकेला तेरे आंसू ने निझल की। कहे कबीर शरण गए मेरी कहे कबीर शरण गए मेरी हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अपुण आत्माओं, परमात्मा ने फाइनल फैसला कर दिया है कि सतनाम बिन सब है साधना जैसे गारा दलदल की। अब दलदल के अंदर आदमी चलता है, ये कदम उठाता है, दूसरा गारा में दस जाता है, यानी वहीं खड़ा खड़ा चल रहा होता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो जितनी भी साधनाएं सतनाम के अतिरिक्त हम अन्य मंत्रों का जाप करते हैं या अन्य कोई साधना करते हैं, वो हमारी साधना गारा दलदल की। और आज यहाँ देखो काल का कैसा जाल है। आज सबके पास मान लीजिए बच्चे हैं, संतान संपत्ति है, अच्छी सुविधाएं हैं, और हम ये सोच रहे हैं बस बहुत ठीक ठाक ठीक काम चल रहा है, और एक समय एक मिनट में मृत्यु हो जा या मारे याद को ना। याद है तो सरसरी तौर पर है, और जिस दिन यह बात हृदय में जम जाएगी कि ना मेरा कब यहां से कूच करना पड़ेगा, ये ठिकाना अपना है नहीं। जब तक हम यहां हैं वो अलग बात है कि हम एक शिष्टाचार से रहें, क्योंकि हम भक्त हैं, इंसान हैं, आपस में प्यार से रहें, लेकिन जाने के समय की बात को याद रखें। अब क्या बताते हैं परमात्मा के अंत समय जब चले अकेला तेरे आंसू ने ढल की। तेरी आंखों में आंसू आओगे कि कहां जाऊंगा, कहां ठिकाना होगा। तो परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी तेरी हो रक्षा जल थल की। मेरी शरण में आ, तेरी सारे रक्षा करूंगा। जब यहां से चलेगा संसार छोड़कर आगे खड़ा पाओगा परमात्मा हमारे, और कहेगा बेटा चल चलेंगे, जहाज में बैठा के ले जाएगा। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बांधे जात जंजीर। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इस भरे पूरे परिवार को जब तू छोड़कर चलेगी आत्मा, डकरा डकरा का टक्कर मारेगी जब सत भक्ति नहीं करी थे। परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, सब यही रह जाएंगे, तेरा जोड़ा जाड़ा सब साजबाज खत्म, और तेरी खबर लेंगे वहां यम के दूत। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें ये राहत मिलती है। आपने इस परमात्मा की वाणी में सुना कहे कबीर सब मिटा दूं रासा तो कर मेरी पहचान। हम परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे, और हमने परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तो पुण्यात्माओं, हम जिन भगवानों की भक्ति किया करते थे वो कंप्लीट गॉड नहीं थे, वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, वो तो अक्षेत्रीय भगवान थे, मालिक थे। जैसे पहले हमने राम की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, परिभाषा क्या है परमात्मा की, राम की, प्रभु की, स्वामी की। एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे राम कहो, साहेब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, ये सभी उस परमात्मा के उपमात्मक शब्द हैं। अब जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी इसको भी साहब बोलते हैं, प्रधानमंत्री को भी साहब बोलते हैं, मुख्यमंत्री को भी साहब बोलते हैं, लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर होता चला जाता है। तो इसी प्रकार जैसे हम इन श्री राम श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान राम कहते हैं और ब्रह्म को भी यानी काल को भी राम कहते हैं, तो ये अपने अपने स्तर के राम हैं। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण विभाग के मंत्री, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री और श्री शंकर जी तमोगुण विभाग के मालिक प्रभु स्वामी मंत्री। अब जैसे एक प्रांत के अंदर एक मुख्यमंत्री होता है, उसके सहयोगी अन्य मंत्री होते हैं, ऐसे ही ये काल भगवान तो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है और इसके तीनों पुत्र ये एक एक विभाग के मंत्री हैं और इनकी प्रभुता केवल पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक के प्राणियों के ऊपर है। और इनका काम क्या है, इनका विभाग क्या है, श्री ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, श्री ब्रह्मा जी के शरीर में ऐसी रेंज निकलती है कि ऐसी रेज निकलती है, किरणें निकलती हैं सूक्ष्म, वो हम सभी प्राणियों को जहां तक इसकी रेंज है तीनों लोकों में पृथ्वी लोक स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन सभी प्राणियों को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है, ये वैसे तो मूल रूप में अपने वहां राजधानी में रहते हैं, अपने लोकों में रहते हैं और इनके शरीर से निकल रही ये किरणें, ये तरंग, ये रेज हमें प्रभावित करती हैं। जैसे एक मकान में रसोई होती है, तीन चार कक्ष, तो रसोई के अंदर छौंक लगा मिर्चों का, उस छौंक की जो निर्गुण रेज गई कहां, निराकार रूप में सूक्ष्म रूप में रेज कहां पहुंच गई, दूसरे कमरे में बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को भी छींके आने लग गई, तो उससे क्या हुआ कि मूल वस्तु रसोई में उससे निकल रही रेज ने कहां जाकर के प्रभाव डाला, तो छींके ना आवे जीव के बस की नहीं, वो छींके ऐसा उसका असर ऐसा हुआ, प्रभाव ऐसा हुआ कि छींके आएंगी ही आएंगी। ऐसे ही ब्रह्मा जी से निकल रही रेज के कारण चीटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा स्वाभाविक प्रभावित है, सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और ये कर क्यों रहे हैं, ये सत्संग में आपको आज बताएंगे। जैसे श्री विष्णु जी सतगुण के शरीर से ये सतोगुण की रेज निकल रही है, भगवान विष्णु के शरीर से निकल रही रेज क्या प्रभाव डालती है हमारे अंदर, मोह ममता यानी आपस में भाई बहन का प्यार, माता पिता में का प्रेम, पति पत्नी का संबंध प्रेम और संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं कि इनसे यू अपने आप हट सके, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये मोह नहीं छूट सकता, ये जीव के ऊपर एक विशेष प्रभाव डाल रखा है। और तमोगुण से ता परिचित हो ही छोटी सी बात पर लठम लठा मृत्यु हो जा मर्डर हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम तीनों इन भगवानों के द्वारा प्रभावित हैं। इसका कारण क्या है कि इस काल भगवान को जो ब्रह्म कहलाता है, ये 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है, 125,000 की उत्पत्ति करता है और उसके लिए इन तीनों पुत्रों को सेवा दे रखी है, इसने ड्यूटी बांट रखी है और स्वयं ये गुप्त रहता है ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, वहां इसने गुप्त स्थान बना रखे है और वहां ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रखता है और जब चाहे उसको यहाँ संसार में भेज देता है, वो सामने दर्शन देती है, ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आऊंगा। आप श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये बोल रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मुझे व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहा है, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल अनुतम यानी घटिया नियम है। अब जो पिता अपने बच्चों से दूर रहता है तो उसमें कोई ना कोई दोष है, तो ये दोष है। इसमें 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित खाता है और 125,000 की उत्पत्ति करता है। अपने आत्माओं, पहले तो आपको छोटा सा यहाँ एक सृष्टि रचना की जानकारी देंगे और उसके बाद फिर हम आपको परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परमात्मा की पहचान बताएंगे। अब सृष्टि रचना परमात्मा ने स्वयं आकर यथार्थ बताई है। चारों वेद भी यही गवाही देते हैं कि परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताता है, विस्तार के साथ बताता है। तो पुनात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर बताया था, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो भगवान सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। तो उनमें से किन किन को मिले थे? आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मुलुकदास साहेब जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय गरीबदास साहेब जी, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहेब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश वाले। धर्मदास साहेब जी ने पूछा था परमेश्वर से, हे परमात्मा, हम किस कारण से यहां काल के जाल में फंसे हैं और ये सृष्टि रचना कैसे की परमात्मा आपने? तब परमात्मा ने क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कही ये एक राम नियारा। अपने आत्मा परमात्मा ने अपने आप को गुप्त रखते हुए अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान कराया, क्योंकि हम इन अज्ञानी संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, और यदि कोई श्री राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई ये कहता कि मैं भगवान हूं, हमें स्वीकार्य नहीं, ऐसा था। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म के अंदर कोई ये कहे कि हजरत मोहम्मद के बाद कोई ये कहे मैं खुदा का रसूल हूं, उन्हें मान्य नहीं। इसलिए परमात्मा ने अपनी जानकारी को इसी तरीके से दिया कि ताकि इनका गला उतर जा, किसी प्रकार ये सुन ले। अपने आत्मा 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना बताई थी, पुराणों वेदों और गीता जी का ज्ञान बताया था, लेकिन इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया, ये कह करके इन्होंने परमात्मा से दूर कर दिया हमारे को कि कबीर अशिक्षित है, ये क्या जाने इन वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों को, ये जो बोल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, इसके माता पिता हैं, ये झूठ बोलता है, इस जुलाई की इस दान की बातों को मत सुनना, ये हमारे हिंदू धर्म का विरोधी है। पुनात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जिसको अशिक्षित अज्ञानी कहा करते थे, उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था जो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। आपको दिखाते हैं, ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा, परमात्मा के द्वारा बताई गई सब सूक्ष्म वेद बोला गया, सूक्ष्म वेद ये लिपिबद्ध किया गया, आपको दिखाते हैं, देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। ये कबीर पंथियों के द्वारा ही संशोधित है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत मुद्रक में प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध, पृष्ठ नंबर 21 पे आपको सुनाते हैं। ये बोध सागर इसका खंड है, ज्ञान सागर इसका अध्याय है, 21 पृष्ठ पे है। धर्म दास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। निर्वाणा माने निर्वाण पद को कोई नहीं जानता, मोक्ष मार्ग को, ये सब संसार विचलित है। धर्म दास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक नाम नियारा। ये राम है। अब कबीर सागर में क्या है, ये 600 वर्ष लगभग पुराना हो गया ग्रंथ, और इसमें कबीर पंथियों ने जो भी उनकी बुद्धि ने काम किया उस तरह कुछ अक्षरों में फेर बदल कर दिया। अब इसके क्या अर्थ है, धर्म दास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का वेद न जाण्या। राम है ये, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम सनातन परमात्मा। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी धर्मदास जी से कह रहे थे कि भाई अब जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूं तुझे, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म तिथि बताऊंगा तेरे को, और बुद्धिमान होंगे तीन प्रमाणों को देखकर तुरंत मान लेंगे, और भाई मूर्ख होंगे वो प्रमाण देख के भी नहीं मानेंगे। तो आप बुद्धिमान हो धर्मदास, समझना इन संकेतों को। क्या कहते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताने चले हैं भगवान, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी ता सतगुरु आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। धर्म राय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लीना। धर्म राय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उसको दावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। ये इस काल और दुर्गा के ये तीन बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तिनके यानी उनके सुत यानी पुत्र हैं ये तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंधर जीव करते हैं सेवा, ये तत्व ज्ञानहीन अंधे इन ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। देखिए, तिनके सुत है तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा, अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्या, काल पाए सभी गैलीना, तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा, तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरे पार। अपना आत्मा धर्मदास जी पवित्र हिंदू धर्म जन्मे थे, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान श्री कृष्ण जी रामचंद्र जी के एक विशेष भगत थे, और जैसा भी उसके गुरु रूपदास जी ने मार्गदर्शन कर रखा था उसके आधार से वो दृढ़ होकर इन्हीं भगवानों पर लगे हुए थे, और ये जानकर लगे हुए थे ये अजर अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। लेकिन जब परमात्मा ने धर्मदास जी को सचखंड दिखाया, सचखंड से फिर वापस छोड़ा, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे फिर वापस छोड़े 10-12 घंटे के बाद, आंखों देखा हाल फिर गरीबदास साहिब जी ने बोला, और आदरणीय नानक साहिब जी को भी ऐसे बेई नदी से अंतर्ध्यान करके सचखंड लेकर गए थे, 3 दिन में उनको वापस छोड़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे फिर वापस आकर छोड़ा था। तब धर्मदास जी ने कहा था, ये भगवान परमात्मा तो आप हो, और ये वेदों में और पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर लिख रखा है, सबका मालिक लिखा हुआ है, इनके कोई माता पिता नहीं। धर्मदास ने कहा, हे परमात्मा, फिर तो ये वेद और कतेब सब झूठे हैं, हमें तो निराकार भगवान बताया, या तो सब कुछ सारे ही साकार है, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार है, यू निरंजन काल साकार है, और मालिक आप भी साकार है, मनुष्य दृश्य है। तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास ये वेद कतेब झूठे नहीं भाई, ये झूठे हैं जो समझे नहीं, ये तेरे गुरुजी झूठे आचार्य शंकराचार्य, इन कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बतावे, इनको अजरो अमर बतावे और सर्वेश्वर बतावे, इन्हीं को नारायण और परमात्मा बता रहे हैं, और इनके इतिहास में लिखा है कि इन तीनों गुणों की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तीनों देवताओं की भक्ति जो करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 तक। तब परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा, बेटा अब ये ज्ञान तुझे मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अभी सीक्रेट रखना, यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया तो बीच वाली पीढ़ी में जहां जब हम सब पुण्यात्माओं को पार करेंगे, अपनी पहचान बताएंगे और ये तत्व ज्ञान बताएंगे, तो उस समय यदि उससे पहले ये सारा ज्ञान सार्वजनिक हो गया और ये मंत्र सार्वजनिक हो गए, तो धर्मदास मेरे बच्चों को फिर धोखा हो जाएगा, ये काल के दूत यही मंत्र यही ज्ञान ये बताते पाएंगे, फिर हम कैसे उनकी भिन्नता कर पाओगे, इसलिए इसको अभी छुपा के रखना। लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है, और ज्योत स्वरूपी काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये नाशवान है। अब यहां धर्मदास के गला नहीं उतरे बात कि अभी क्यों कर बात बने, और जबकि आंखों देख भी लिया तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे, अब आपको थोड़ा सा शिव पुराण दिखाते हैं, तीनों देवताओं की उत्पत्ति का हमारे पुराणों में जिक्र है। देखिए संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके संपादक हैं अनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये फोन और फैक्स नंबर है इनके। अब इसके 98 पृष्ठ से आपको दिखाते हैं रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ के नीचे से लेते हैं। ये पांचवा अध्याय समाप्त हुआ रुद्र संहिता का। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, यहाँ शुरू हो गया छठे चैप्टर में 99 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय तरातर जगत नष्ट हो गया था, सब जगत जल ही जल था, कुछ भी ना था, उस समय सत्ब्रह्म इस श्रुति में सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब देखना 100 पृष्ठ से शिवपुराण 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में, ये इसको परब्रह्म कहते हैं काल को, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्त युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान, यानी सच्चा झूठा। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ये तो ब्रह्मा बोल रहा है, कुछ परमात्मा के सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपनी अटकलबाजी। वास्तविकता ये थी कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, शक्ति को परमात्मा ने इसके पेट से निकाली थी और फिर उनको सतलोक से निष्कासित कर दिया था। ये मिलता जुलता ज्ञान परमात्मा से सुना हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आके कबीर जी ने इस ब्रह्मा जी को विष्णु जी को शिव जी को ये ज्ञान सुनाया था, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया, काल के दबाव से, अपने पिता के प्रभाव से। अब देखिएगा, अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति यानी स्त्री की सृष्टि की, जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, और गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया, वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, ये सदग्रंथों में लिखा है। सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये दुर्गा इसके पेट से निकली थी, परमात्मा ने सच्चाई बता रखी है कि पेट से देवी करी पुकारी, ये पुकारा ही साहेब मेरा करो उबारा, टेर सुनी ता हम आए और अष्टंगी का बन छुड़वाए। वो उसकी 8 भुजाएं हैं, नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंग की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। अब वो जो सदाशिव है, ये काल है, ये सदाशिव ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता, देखिए वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब हम 101 पृष्ठ पर आ गए हैं इस रुद्र संहिता का। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। ये काल क्या करता है, कभी तो विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो जो उसको शिव रूप में देखते हैं तो उन्होंने शिव पुराण बना दी, जिसने विष्णु रूप में देखा उसने विष्णु पुराण बना दी, और साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी साथ लिख दी। तो ये उनसे अलग है। देखिएगा, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म को ज्योत रूपी निरंजन कहो, एक ही समय शक्ति के साथ है ये शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। वह उत्तम काशी, उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं, वह परम निर्वाण और मोक्ष का साधन है, जो सबसे ऊपर विराजमान। वे प्रिया और प्रियतम, जो पति और पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म आपने पढ़े लिया, ये दुर्गा और काल, प्रकृति और काल, जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। दुर्गा और काल ने यानी शिवा दुर्गा शिव ये काल ब्रह्म देवर से एक समय आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में दुर्गा और इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि का संचालन महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष यानी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। 102 पृष्ठ पे रुद्र संहिता पढ़ रहे हम। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से, पुराण बता रहे हैं। और ये नकली शंकराचार्य आचार्य नोगेन का कोई माता पिता नहीं है तो अजर अमर है। ये टीचर कहाँ है हमारे धर्म गुरु जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं। तो इन्होंने तो हमें पूरे समाज को डबोने का काल से ठेका ले रखा था। अभी ये छठा अध्याय समाप्त हुआ, यहाँ से हमने पढ़ लिया। अब इसकी ये सातवां अध्याय है। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को बता रहे हैं। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था दुर्गा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से, तो मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अपने आत्माओं यहाँ स्पष्ट हो गया, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होगी दुर्गा और काल से, ये इनके पिता है, ये हमारे पुराण बता रहे हैं। और 5500 वर्ष हो गए इन पुराणों को लिपिबद्ध हुए। अरे हमारे धर्म गुरुओं ने सिर पर धर के गुमया करते हैं और कहते थे पुराणों के आधार से आपको ज्ञान बता रहे हैं और पुराणों को सत्य मानते हैं, वेदों के आधार से ज्ञान बताते हैं, श्रीमद भगवद गीता के आधार से भक्ति विधि बताते हैं। इनने सारा उल्टा पाठ पढ़ा रखा है। नाम वेदों गीता पुराण का लेते, ज्ञान लोक वेद सुनाया करते, दंत कथा सुना दी। अब आपको दिखाते हैं। अब यहाँ अनुवादकर्ता विचलित हो गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे दिखाऊं। यहाँ तो कर गया गोड़ मोड़। कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे वा ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। यहाँ देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण और ये प्रश्न नंबर 110 नौवां अध्याय रुद्र संहिता का। यहाँ लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव जो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म गुणातीत माने गए। ये हो गए चार, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये शिव ये काल। अब यहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया और थोड़ा सा करेंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु का इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, विष्णु कहते मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। इनके पिता ने इस काल रूपी ब्रह्म ने इनके बीच में एक पिलर स्तंभ खड़ा कर दिया तेजों में। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसका और छोर खोजने के लिए चक्कर में पड़ गए। फिर ये खुद आ गया शिवजी रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर इनसे क्या कहने लगा ये थोड़ा दिखाते आपको। फिर आज क्या था सत्संग अब शुरू होगा, ये देखिएगा। ये है विद्वेश्वर संहिता रुद्र संहिता में, विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये ब्रह्मा और विष्णु का लड़ाई हो रही थी, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया। फिर इस स्वयं आकर प्रकट हो गया। तो यहाँ क्या कहने लगा 25 पृष्ठ पे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या है यह हमें दोनों को बताएं। भगवान शिव बोले, यो काल रूपी ब्रह्म बोला सदा शिव जिसको कहते हैं, मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। आगे चले हम अपने काम की बात पढ़ेंगे। ये 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, यहाँ कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। पुत्रों ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से, सृष्टि और सतीति नामक दो कृत प्राप्त किए हैं, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप, मेरे ही स्वरूप जैसे जैसे मैं अब खड़ा हूं, इसी जैसी सकल के रुद्र और महेश्वर ने, ये मैं नहीं है, ने दो अन्य उत्तम कृत सहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये सिद्ध हो गया, दो तयगर मार विष्णु दोनों और दो रुद्र और महेश्वर और पांचवा ये जो बोल रहा है, बस इतना ही चाहिए था। अब यहां देखना, अब ये भी सिद्ध करना है कि ये काल रूपी ब्रह्म है, इसी ने गीता का ज्ञान दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके। देखिएगा इसी प्रश्न नंबर 26 पर ही है ये, यहां पर हम देखते हैं, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मां मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर श्रवण करने से मेरा ही श्रवण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का ए का और पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। ये ओम नमः शिवाय है ना, ये अलग लिखा हुआ, ये किसी इस मूल पाठ में नहीं है। ये पांच अवतेश ने बता दिए, इन पांचों तो मिलकर एक हो गया, तो ये कहते हैं ये ओम नमः शिवाय पंच अक्षर मंत्र हो गया। नहीं, ये गलत मंत्र है, ये नहीं है। ये मंत्र इसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा एक अक्षर ओम है। अब थोड़ा सा इसमें दिखाते हैं और ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मां विष्णु महेश से अन्य है ये बोलने वाला, ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, इसी ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है। इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि गीता ज्ञान दाता भी यही है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता, यहां देखना मंत्र नंबर 13, ये 13 नंबर मंत्र है। इसमें स्पष्ट किया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदम देहम सयाति परमाम गतिम। अब ये यहाँ से शुरू होता है क्योंकि 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया उन्होंने, 13वें का यहाँ से शुरू होता है। जो पुरुष ओम इस ओम यह एकाक्षर ब्रह्म एकाक्षर एक अक्षर रूप यानी ओम एक अक्षर का ब्रह्म, ये दोनों अनुवाद गलत किया है। एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, मुझ निर्गुण ब्रह्म का निरंतर चिंतन करता हुआ, चिंतन करता शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब मूल संस्कृत देखना, मूल पाठ में क्या लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल यह है ओम, ये ओम इति एक अक्षरम ये एक अक्षर ओम है उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। अब ये स्पष्ट हो गया कि गीता जी का ज्ञान भी इस काल रूपी भगवान ने ही दिया है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माँ है। ये तो इन सदग्रंथों ने, पवित्र सदग्रंथों ने आज आपके समक्ष ये गवाही दे दी और 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं बता कर गए थे कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनके माता पिता हैं। तो पुण्यात्माओं कौन है भगवान? कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा जिसको अशिक्षित कहा करते थे कि क्या जाना ये दानक सदग्रंथों के बारे में, और उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान 600 वर्ष पहले प्रमाण, तो इनसे अब हमें ये दृढ़ होगा कि हु इज गॉड। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी को ये बात समझ में आ गई कि भगवान सारी है सच्ची, तो कहा है भगवान है परमात्मा, हमारा उद्धार कैसे होगा, आपकी बात को कोई सुनता ही नहीं, ये मालिक आपके बच्चे आपको कैसे पहचानेंगे। तो परमात्मा ने कहा धर्मदास इस काल कर मेरा एक कंप्रोमाइज हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, इसने मेरे से कहा था 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, मेरे से वचनबद्ध कर लिया था मुझे, और चौथे युग में कितने ही जीव ले जाना, तो चौथा युग ही भावगा आ गया है, चौथा युग कलयुग, और इस कलयुग के बीच का जो समय है, बीच की क्रीम, इसमें मैं अपनी आत्माओं को पार करूंगा और फिर मैं ही चलकर आऊंगा, तब तक ये काल मेरे नाम ते 12 पंथ चलाओगा नकली, और उसके बाद फिर और अनेक पंथ चलाओगा, सबको भ्रमित करेगा। इसने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, इन द्वादश पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही। ये 12 तो कबीर पंथ के, कबीर जी के नाम से कबीर पंथी कहलाते, ये काल के सारे पारों के 12 के 12। फिर कहा और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवी देवल और धाम पुजाऊं। कहा था जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी और हो बाद बखाने। कहा था काल नहीं सा कर दूंगा कि तेरी बात ने कोई नहीं सुनेगा, नकली सतलोक की महिमा गाने वाले नरे पंथ चला दूंगा, जब तुम जाओगे उससे पहले तो सारे डूंडा पाट दूंगा, और तेरे दूत का जो तुम भेजेगा या आओगे तुम, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। तब धर्मदास ने कहा भगवान फिर कैसे बात पड़ेगी दाता, आगे तो कलयुग घोर आवेगा, अब तो लोग बहुत धार्मिक हैं, परमात्मा को चाहने वाले डरने वाले हैं, और फिर कब दया होगी दाता, अब बिना मान रही है आपकी एक भी बात को। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास जब यो कलयुग 5505 वर्ष जब बीत जाएगा, तब हम अपने इस ज्ञान का प्रचार करेंगे, तब मैं अपने दास को भेजूंगा, और वो जो है मेरी ही शक्ति के आधार से सब ज्ञान प्रचार करेगा। पहले तो पुण्यात्मा हम आपको सदग्रंथ दिखाते हैं कि जब कलयुग बीते 5505 तब ये मेरा वचन होगा सच्चा, ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाओ ठिकाना, ये थोड़ा सा आपको भेद देंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति के लिए तो आप तड़प ही रहे हो, परमात्मा की महिमा से आप परिचित भी हो, तभी तो उसकी खोज में लगे हो, कोई कहीं गया कोई कहीं गया, कोई किसी संत के पास कोई पंथ में, अलग अलग धर्म भी बनाए हमने, शायद हमारा कल्याण हो जावे। भगवान कबीर साहब कहते हैं जब तक मेरी पहचान तुझे नहीं होगी प्यारी आत्मा, तू दृढ़ नहीं हो सकता। तो दास चाहता है आपको परमात्मा की पहचान करा दूं।